रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कितना विलक्षण प्रसंग है। परशुराम जी महाराज जरा से भगवत वृत्ति पैदा होते ही करे तो साक्षात भगवान है, तो वे अपने तपस्या करने के लिए भक्ति करने के लिए वन में चले गए। देखो एक तपस्या होती है और एक भक्ति होती है, इन दोनों में अंतर होता है। जहां भोगों में रस बुद्धि होती है वहां तपस्या हो सकती है, और जहां भगवान में रस बुद्धि होती है वहां पर वो भक्ति होती है। ये अंदर का भेद है, बाहर से कुछ पता चलता नहीं है। तो हमारे परशुराम जी महाराज ये तपस्या करने गए कि भक्ति करने गए, यहां तो लिखा है तपस्या करने गए, पर ये बताना ये चाहते हैं तपस्या नहीं भक्ति करने गए हैं। क्यों? क्योंकि बाह्य रूप तो एक जैसा ही होता है भक्ति का और तपस्या का, अंदर का जो भेद होता है वो अपने को दिखता नहीं है, इसलिए बात कही। जितने राजा लोग वहां और लोग जो नाराज हुए हुए थे ना राम जी से धनुष टूटने के कारण से, वे राजा लोग देखे कि अरे परशुराम जी की यहां ये हालत हो गई तो हमारी क्या हालत हुई, सब भग गए, चुपचाप सिरक गए वहां से। खूब अयोध्या जनकपुरी में आनंद छा गया, सब लोग आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, माताओं बहनों का झुंड एक दूसरे से मिलता है और आपस में बहुत अच्छा सुंदर गान करते हैं, हर्ष उल्लास बताते हैं। जनक जी महाराज के सुख को कैसे बताएं? जैसे कोई जन्म जन्म का दरिद्री हो और उसको कोई बहुत बड़ा खजाना मिल जाए, एक क्षण में उसकी दरिद्रता मिटती है, ऐसे विदेह जनक जी महाराज की जो आनंद की सीमा ही नहीं रही। सीता जी बहुत प्रसन्न थी, जैसे चंद्रमा उदित हो जाने पर चकोर कुमारी चकोरी है उसको यूं देखती रहती है प्रसन्नता से, ऐसे सीता जी को आनंद हो रहा था। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आपकी कृपा से राम जी ने धनुष तोड़ा, मुझे कृतकृत्य कर दिया, क्या कहूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई मैंने इसमें क्या किया, विवाह तो चाप के अधीन है, ये मामूली धनुष नहीं था वो। इस विश्वामित्र जी इस प्रसंग में विश्वामित्र जी ने जो ये बातें कही ना कि रहा विवाह चाप अधीना, ये शंकर जी के धनुष के अधीन बात है। तो ये शंकर जी का धनुष था इसके विषय में प्राय लोगों को मालूम नहीं है और प्राय ग्रंथों में भी ऐसा आता नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं कि वो धनुष रखा हुआ था, सीता जी रोज उठा लेती थी, झाड़ू बाहर निकालते हैं चीज पड़ी रहती उठा लेती थी। तो जनक जी ने देखा कि अरे इतने आदमी नहीं उठा सकते, ये बच्ची ही उठा लेती है, तो मैं उसको दूंगा जिसको ये तोड़ देगा। पर ये बात रामायणों में नहीं आती, पर जितने आदमियों के मुख है ना वो सब रामायणी है, क्योंकि रामायण शत कोटि अपारा बता दिया। कोई पुस्तक की रामायण थोड़ी होती है, राम जी के विषय में जो लोग अपने मन से सोच सोच करके बातें बनाते वो सब सच है। पुस्तकों में नहीं आया, हम तो इतना ही कह सकते हैं। वास्तव में भगवान शंकर की कृपा हुई, जनक जी के पास परशुराम जी महाराज के जो पूर्वज थे उनमें से कोई ये धनुष लाया हुआ रखा हुआ था और जनक जी महाराज के पास था और इनको कोई ऐसा ही दृष्टांत हुआ था कि ये धनुष तुम्हारे द्वारा तुम्हारे यहाँ बहुत जो है विलक्षण काम करने वाला होगा इस सृष्टि में। इसके टूटने पर देखो, कोई तो वस्तु रहती है तब कोई बड़ा काम होता है। जैसे शंख है, दक्षिणाभिमुख शंख है, घर में रहता है, दरिद्रता नहीं आती। लेकिन कोई चीज ऐसी भी है कि जिसके टूटने पर बहुत बड़ा विलक्षण काम होगा, तो भाई तुम्हारे यहां जो ये धनुष है ये जिस दिन टूटेगा उस दिन इतिहास में तुम अमर हो जाओगे। विश्वामित्र जी ने वही बात याद दिलाई, टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुनर नाग विदित सब काहू। अब देखो और तो सब ठीक बात हो गई, अब तुम ऐसा काम करो जैसे तुम्हारे वंश के अंदर क्या क्या विवाह में होते हैं वो करो, लेकिन एक काम सबसे पहले करो कि अयोध्या में अपने दूतों को भेजो और दशरथ जी महाराज से कहो कि वो बारात लेकर के आए। राजन गौरी महाराज, कितनी अच्छी आपने हमको शिक्षा दी है। वो दूतों को बुलाए, अब ये दूत अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। पठये दूत बोली तई काला, दूतों के जाओ अयोध्या जाओ, तुम इधर अपने नगर को जो संवारा है जनक जी महाराज ने, नगर समारू चारू पासा, कैसी कैसी मणियों की लड़ियां बनाई है, कैसे कैसे पान बेल आदि बनाए हैं, बेनुहरित मणिमय, देखो बांस है यूं, उस बांस के ऊपर मणियों को ऐसे चिपका चिपका करके लगाया है जो मणियों का ही बांस हो गया। बेनुहरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने, पता नहीं चलता था कि इनमें परब कहाँ है, माने बांस में गांठ होती है ना उसको परब बोलते हैं, गांठ कहाँ है, कैसे सीधे के सीधे बांस मणियों के बनाए हुए, और सोने की स्वर्णम पत्री पत्नी ये फूल बैली होते हैं ये ऐसी ऐसी ये कनक कलित अहि बैली बनाई, ऐसी सुंदर सुंदर वहां पर चित्रकारियां हुई, और उन खंभों के ऊपर देवताओं के चित्र बनाए गए। नील मणियों को ले ले करके वहां सब प्रकार के श्रृंगार किए जा रहे थे, कितनी नील मणियों को काम में लिया है। दीप मनोहर मणिमय नाना, मणियों के बड़े सुंदर दीपक, उनकी शोभा को कोई कह नहीं सकते हैं। जिस मंडप के अंदर सीता जी का विवाह होगा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस मंडप की शोभा को कौन ऐसा कवि हुआ है जो बता सके कि इतना सुंदर है वो, कवि की कल्पना वहां जा ही नहीं सकती है। क्योंकि वहां सीता जी का विवाह होगा, क्योंकि वहां राम जी के साथ विवाह होगा सीता जी का, उस मंडप के सौंदर्य को कौन कहेगा। और जनक जी महाराज का घर तो वैसे ही बड़ा सुंदर, स्वयं इंद्र भी इनके शोभा को देख करके ललचाता था, वो जनक जी महाराज अपने महल को और सुंदर बनाने लगे। तेई लघु लगई भुवन दशचारी, एक बार जिसने जनक जी का महल देख लिया उसको 14 भवन है वो फीके लगते थे, उनमें वो चीजें नहीं जो जनक जी महाराज के महल में शोभा थी। जो संपदा नीच गृह सोहा, जनकपुरी के अंदर एक नीचे से नीचे आदमी के घर में जो संपदा थी उसको देख करके तो इंद्र भी ललचाता था, अब जनक जी की क्या बात कहे। बसई नगर जय लक्ष्य करी कपट नारी बरवेश तेहि पुर के शोभा कहता सकुच ही सारद शेष। अरे जिस नगर के अंदर लक्ष्मी जी स्वयं कपट वेश बना करके बैठी हुई है, उस शोभा को शारदा कैसे कहेगी, शेष भगवान कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते। ये तो हो गया देखो जनकपुर का काम। अब ध्यान देवे, अब उनको दूतों को कहां भेजा, अयोध्या भेजा। दूत कहां आए, अयोध्या आए, ऐसा नहीं बोल रहे हम। पहुंचे दूत रामपुर पावन, ये दूत है वो अयोध्या में नहीं आए, ये राम जी के पुर में आए, राम जी के दरबार में, राम जी के नगर में आए। कि रामपुर क्यों बोले साहब, राम जी का तो कोई यहां लेना देना ही नहीं है। जब तक बाप बैठा रहता है तब तक राजा कोई बेटा थोड़ी होता है, वो नगर है वो बेटे का थोड़ी है, वो तो जो है दशरथ जी का है। तो पहुंचे दूत रामपुर पावन क्यों कहा, इसलिए कहा है कि दशरथपुर कह देते ना तो ये दूत वहां के एक अलग माया जाल में फंस जाते हैं। दशरथपुर भी आया, एक सरस्वती आई थी ना मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ने के लिए, आई तो थी और ही कुछ काम, कैसे न कैसे यहां बुद्धि बिगाड़े कि राम जी का राजकाज बंद हो जाए, तो अयोध्या तो आ गई। अब वो सोचती है कि मैं कहां जाऊंगी, दशरथपुर आई, शारदा दशरथपुर आई, वो दशरथपुर में आई ना, तब वो अंदर प्रवेश कर गई दशरथपुर अयोध्या जी में, जाकर के देखने लगी किसकी बुद्धि खराब है यहां, सबके मन है वो राम जी के भक्ति से भरपूर है, सबके मन में भक्ति है, वो सारी अयोध्या में ऐसा वातावरण, अब क्या करें। देखा कि कहां जाऊं, केके के पास, एक केके तो राम के लिए जीती मरती है, कहां जाए क्या करे, करते केके की दासी मंथरा, मंथरा का प्रेम किस में है, मंथरा का प्रेम यदि भरत में हो तब तो वो छूती नहीं मंथरा को, लेकिन मंथरा का प्रेम राम में भी नहीं है, भरत में भी नहीं है, मंथरा का प्रेम तो अपने में है, अपनी कुछ अपने अहंकार में है। उस अहंकार को पुष्ट करने के लिए वो केके से प्रेम करती है, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। ये एक ऐसा हृदय है कि जिसमें राम का प्रेम नहीं है, तो सरस्वती उसके हृदय में चली गई, मंथरा के हृदय में। क्यों गई, कि वो दशरथपुर आई ना तब तो प्रवेश कर गई अयोध्या में, यदि वो रामपुर समझे तो वहीं से वापिस चली जाती। दूत कहा है कि पहुंचे दूत रामपुर पावन, तो अब ये अयोध्या ये जनकपुर से आए हुए दूत है, ये राम जी के पुर में आए और जाकर के उन्होंने नगर को देखा, अरे अयोध्या तो बड़ा विलक्षण है। महल में गए, द्वारपालों से निवेदन किया, हम जनक जी के यहां से आए हैं और बहुत विशेष समाचार लेकर आए हैं, हमको महाराज आज्ञा देंगे तो अंदर जाएंगे। तो दशरथ जी ने बड़े प्रेम से उनको बुलाया, बड़ा अच्छा शिष्टाचार करके और जनक जी का वो पत्र दिया। पत्र बांसते बांसते दशरथ जी महाराज के आंखें टप टप होने लगी, वो ये यूं रख रहे हैं पत्र को, कहीं आंसू इसमें गिर जाएंगे तो अब ये लिखे हुए बिखर जाएंगे। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात, आई भरी छाती। इतने दिन हो गए राम लक्ष्मण का कोई समाचार नहीं था। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। अब राम जी के समाचार लेकर के उस पत्र को उन्होंने छाती से लगाया, अब कुछ नहीं कह सके कि भले समाचार है कि बुरे समाचार है, खाटे मीठे कुछ नहीं कहे, आनंद में डूब गए। अब वो आनंद के आंसू बहते जा रहे, फिर धैर्य धारण किया, पुनि धरी धीर, पत्रिका बांची, फिर दोबारा बांची। सभा लगी हुई थी, सभा में वो ऐसे ऐसे करने लगे तो सभा वालों ने कहा क्या हो गया, क्या समाचार आया है। अब वो आंसू तो भाई दो समय में ही आते हैं, विशेष करके तो दुख में आंसू आते हैं, देखा तो ये था, सुख में आंसू तो कम आते हैं। लोगों ने कहा क्या बात है, क्या बात है। तो जब सब प्रकार से कही तो हर्षी सभा बात सुनी सांची, जब सब सभा में सुनाया तब जाकर के सभा वाले प्रसन्न हो गए। खेलते खेलते भरत और शत्रुघ्न भी आ गए, बड़े प्यारे लगे दशरथ जी को। आगे पिताजी पिताजी पत्र कहां से आया, पिताजी पत्र कहां से आया, कहां से आया, क्या हमारे भाई साहब का कोई समाचार है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, क्या हमारे दोनों भाई खूब आनंद से हैं, तो जो समाचार है वो हमको बताओ। अरे बेटा हम बताते बताते, सुनो तो सुनो, ऐसे ऐसे जनकपुर में गए, ऐसा हो। अच्छा नहीं नहीं हम खुद बांचेंगे पत्रिका, हम खुद बांचेंगे। इधर वो कहा गया अच्छा बांच लो, उन दूतों को बुलाया, दूतों से कहा कि भैया तुमने जो कुछ ये समाचार लिखे हैं वहां सभा, वो जो वहां सभा लगी हुई थी, धनुष तोड़ने की बात लिखी है, तुमने खुद ने देखा था क्या, तुम नीके नीचे नहरे निहारे और मेरे दोनों बेटों को तुमने देखा था वहां, वहां विश्वामित्र जी को भी देखा, पहचाना हो तुम, कहो स्वभाव, क्या उनके स्वभाव को भी तुम पहचानते हो। राजा दशरथ जी ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जिसमें हर प्रश्न में प्रेम झर रहा था। क्या बताए, जिस दिन से हमारे विश्वामित्र जी गए उस दिन के बाद से हमारे पास टूटे फूटे समाचार आते थे, विश्वामित्र जी का यज्ञ हो गया, विश्वामित्र जी ने वो जगह छोड़ दी, कई असुर मारे गए, ऐसे टूटे फूटे समाचार आते थे। तब ते आज सांची सुधी पाई, आज हमको पूरे समाचार मिले। दशरथ जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ तुम अयोध्या वो जनकपुर के दूतों, एक बात बताओ, कहो विदेह कवन विधि जाने, ये जनक जी का और राम लक्ष्मण का इनका कैसे क्या मिलना हुआ सब बताओ। वो दूत ऐसी बातें सुनकर के बड़े आनंद में डूब गए, देखो कितना प्रेम, कितना भोलापन, कितना सीधापन है। तो वो कहने लगे महाराज आप तो सब राजाओं के मुकुट मणि है, आपके समान ही संसार में कौन धन्य पुरुष बड़भागी होगा, आपको राम लक्ष्मण जैसे बड़े संसार के सबसे बड़े विभूषण वो आपको पुत्र के रूप में मिले, हम आपके भाग्य की क्या महिमा कह सकते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, ये तो त्रिलोकी के उजियारे हैं, सब जगह प्रकाश करने वाले हैं, आपके पुत्रों के विषय में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि इनका ऐसा तेज है कि सूर्य भी इनके सामने शीतल है, और उनके प्रकाश में उनके तेज में इतनी धवलिमा है कि चंद्रमा भी उनके सामने मलिन पड़ जाता है। अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए रवि की दीप कर लीने, सूर्य को देखना है तो क्या दीपक दिखाना पड़ेगा। तो महाराज ऐसे आपके राम लक्ष्मण के लिए क्या हमारी वाणी वहां तक पहुंच जाएगी। जब महाराज वो स्वयंवर होने लगा, देखो स्वयंवर के पहली घटना नहीं बता रहे हैं, वो पहली घटना देखी नहीं, वो ये पूछ रहे कि तुमने कैसे देखा, तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से देखा क्या, आंखों से देखने का काम तो वही मिला उनको। तो कहते सीए स्वयंवर भूप अनेका, सीता जी के स्वयंवर में अनेक राजा लोग आए। हम तो ये कहते हैं कि पृथ्वी भर के सब राजा वहां सिमट गए, माने सब आकर के बैठ गए, और एक एक से एक एक बलवान। वे जब भगवान शंकर के धनुष को टार नहीं सके तो सब हार करके लज्जित हो गए। अपने को वो त्रिलोके में बहुत बड़े भटमानी मानते, हम बहुत बड़े योद्धा हैं। आज उनकी सबकी शक्ति का ज्ञान शंकर जी के धनुष से होने लगा। आप जानते हैं महाराज, ये बाणासुर है, ये सुमेरु पर्वत को उठाने का दम्ब भरता था, सुमेरु पर्वत को उठा ले, लेकिन वो भी जाकर के यहां हार खा गया। और कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण था, जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। अब यही प्रश्न आता है, क्या राम जी के समय में ये बाणासुर था क्या, रावण था क्या? यदि बाणासुर और राम वहां पर, ये राम जी वहां पर थे और रावण और बाणासुर वहां होते, जरूर इनका आपस में मिलना बोलना कुछ बात होती। लेकिन यहां लिखा है कि रावण बाणासुर थे, वहां भी आपने सुना ही था कि रावण बाणासुर जिसको छुआ नहीं है, बंदी लोगों ने कहा। आगे मंदोदरी भी कहेगी, आप सीता जी को लाए हो तो आप हार करके लाए हो, अच्छा नहीं किया, आप भी तो उसी सभा में बैठे हुए थे जिस सभा के अंदर आप, जिस सभा के अंदर सीता जी को लेकर के राम जी गए थे धनुष तोड़े, तब बल वहां दिखाते, सीता जी को चुराने में कहां आपने ये बल दिखाया। तो ये सीता जी का स्वयंवर वास्तव में कई वार हुआ था, कई वार यहां पर ये हुआ था सीता जी का स्वयंवर। तभी तो बंदी जनों ने बीते काल की बात बताई कि रावण बाणासुर छुआ नहीं चापा, बाणासुर ने रावण ने इसको छुआ तक नहीं, बीते काल की बात है। तो यहां भी जो दूत बोलते हैं ये भी कहते हैं कि एक बार बाणासुर और रावण भी आए थे, उन्होंने भी इसी स्वयंवर सभा में पराभव पाया था, वे भी पराजित हो गए थे, और अब की बार के स्वयंवर में ऐसा हुआ। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सीता जी के स्वयंवर में राम जी महाराज गए ही नहीं थे, स्वयंवर यज्ञ नहीं था, तो वहां तो दूसरा ही यज्ञ था। जनक जी महाराज अपनी प्रसन्नता से यज्ञ कर रहे थे, भाई यज्ञ क्या करते हैं राजा लोग, जैसे आप लोग गोठ करते हो, कभी मन में आ गया आज गोठ करो तो सब जने मिलके गोठ करते हैं, ऐसे राजा लोग मन में आ गई तो यज्ञ करो, तो यज्ञ करते थे। तो जनक जी महाराज कोई यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को देखने के लिए आए थे ये विश्वामित्र जी महाराज। जनक जी ने यू ही बात छेड़ दी कि मेरे पास एक धनुष है, ऐसा है, इसको देखना। ये विश्वामित्र जी ने छेड़ी, तुम्हारे पास एक धनुष है क्या है, तो दिखाओ, ये राम जी को दिखाओ देखे। तो उसको दिखाने के लिए लाए, दिखाया, उठाया, टूट गया ये। तब कहा कि महाराज मेरी तो ये प्रतिज्ञा थी कि इसके साथ जो तोड़ेगा उसके साथ विवाह, तो मेरी सीता के साथ विवाह कर दो, कर दिया साहब। वहां और ढंग की बात है। तो रावण बाणासुर ये अलग ढंग में आए थे, इस राम जी के स्वयंवर में इस उपस्थिति में वो उपस्थित नहीं थे। दूत कहते हैं महाराज, सब राजाओं के बीच में जब वो धनुष को लेकर राम जी महाराज खड़े हुए, भंजे वो चाप प्रयास बिनु जिमिगज पंकज नाल, वो एक जैसे हाथी है वो यू कमल नाल को यू एक झपटे से तोड़ता है, क्या जोर आता है। ऐसे राम जी ने जब उसको बिना किसी प्रयास के तोड़ दिया तो महाराज सब लोगों के मन में बड़ा अचंबा हुआ। और उसी समय परशुराम जी आ गए और ऐसे ऐसे उनको आंख दिखाए, डांट डपट की, लेकिन महाराज और तो हमको समझे नहीं। परशुराम जी महाराज के पास एक अपना धनुष था, वो निज धनु दीना, अपना धनुष यूं दिया देकर के उन्होंने आश्चर्य समझा और उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और वन में चले गए। अब देखो यहां दशरथ जी महाराज के मन में राम जी का ऐश्वर्य प्रकट होना चाहिए, पर कोई ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज तो वही माधुरी रस में है, प्रेम रस में है। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, सभा समेत राव अनुरागे। देखो भगवान के अंदर भगवान की विशेषता देख करके जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम स्थिर नहीं होता। भगवान को अपना समझ करके जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम स्थिर रहता है। माँ है वो बेटे से प्रेम करती है तो बेटे के अंदर गुण समझ करके प्रेम नहीं करती, वो अपना समझ के प्रेम करती है। अपना है बेटा, मेरा है बस। अब वो भला है बुरा है क्या है वो नहीं देखती, वो मेरा बेटा है। बेटा माँ से प्रेम करता है तो छोटा बेटा माँ की क्या विशेषता समझेगा, छोटा सा बालक इसने मुझे जन्म दिया है, इसने मुझे दूध पिलाया है या पिलाती है, ये क्या कुछ नहीं जानता। वो अबोध बालक है पर उसके मन में यह है कि मेरी ये माँ है ना, ये मेरी है। तो जहां भगवान में अपनापन बढ़ता है वहां ऐश्वर्य को भूलना भक्त का गुण होता है। इतना बड़ा ऐश्वर्य बता रहे दूत समुदाय पर राजा के तो वही बात लगी, राव अनुरागे। और बड़े अनुराग में आकर के कहता, ओह लो दूतो हम तुमको मणियों का हार देते हैं, देखो ये मणियों को बहुमूल्य मणियों का हार है। हे महाराज हम यहाँ लेने के लिए थोड़ी आए, कही अनितिते मुंदे कानारे राम राम, यू कान बंद कर लिया। हमारा ये धर्म है जहां हमारी कन्या आने वाली है और जो हमारी कन्या का ससुराल हो गया, जहां हम कन्या दान दे रहे हैं वहां से लेने की बात कैसे की जाए। ये दूतों पर भी असर हुआ हो। एक बार की बात है कि बरसाने का एक चमार था, चमार बेगवार, वो चमार व्यक्ति वृंदावन में गया, कोई काम से गया, गर्मी का दिन था और उसको बहुत जोर से प्यास लगी आई। पर ये वृंदावन है, ये तो हमारी राधा का ससुराल है, हमारी बिटिया का ससुराल है, तो हम यहाँ पानी कैसे पी सकते हैं, ससुराल में पानी, हमारी बेटी का ससुराल पानी कैसे पिए भाई, जल पिया नहीं। वो चल पड़ा, पैदल पैदल ही जाते थे, चलते चलते वृंदावन से पार होकर अब बरसाना थोड़ा दूर पड़ता, बहुत प्यास में घबरा गया वो। चलते चलते वृंदावन की सीमा पार हुई और बरसाने की सीमा आई, तब तक एकदम घायल हो गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर के वो लेट गया कि बस अब मरेंगे। लेकिन मन में ये बात, इस बात का संतोष था कि चलो हमने वृंदावन में बेटी के यहाँ पानी नहीं पिया, ये बड़ा अच्छा हुआ, अब मरेंगे तो कम से कम हमारे बरसाने में मरेंगे। ऐसे करके वो ले और अचेत हो गया। उसी समय में उसकी बिटिया आई, बेटी अपने हाथ में रामझारा लेकर ठंडा जल लेकर आई, पिताजी पिताजी आप बहुत प्यासे हैं, लो जल लेके आयो। अरे बेटा तुझे किसने भेजा, बड़ा अच्छा किया तूने मुझे जल पिला दिया, ओहो जल ले आई तू, खूब अच्छा उसने जल वल पिया। कहा बेटा अब तुम जाओ, मैं धीरे धीरे आऊ, मेरे प्राण बच गए बेटा, चिंता मत करो। बेटी चली गई और घंटे दो घंटे बाद में वो भी अपना पहुंच गया घर पर। जाते ही फिर बेटी को गोदे, बेटा आज तूने मुझे जल पिला दिया, मेरे प्राण बच गए बेटा, नहीं तो मैं तो, कि पिताजी मैं तो कहीं गई नहीं थी, मैं तो यही थी, क्यों करती हो मखौल क्यों करती हो बेटा, तुम ये रामझारा, यही रामझारा है, ये रामझारा लेकर नहीं आई। पिताजी मैं सत्य कहती हूँ, मैं तो कहीं गई नहीं, माँ से पूछ लो। तो माँ, उसकी माँ से पूछा कि आज क्या बच्ची तो कहीं गई नहीं, हमारे पास ये छोटी बिटिया कहाँ जाएगी, तो फिर मुझे जल किसने पिलाया, ये पूछ सकते हो जल किसने पिलाया, हमें क्या पता, लेकिन ये तो कहीं गई नहीं। अरे इसने मेरे से बात की है कि पिताजी पिताजी जल लेकर क्या होगा, नहीं ये नहीं हुआ। तब वो रहे हमारी बिटिया राधा जी, राधा जी ने जल पिलाया। तो भगवान है वो प्रेम के अंदर जात पात थोड़ी देखते कि ये चमार है साहब, इसको हम दर्शन नहीं देंगे या इसको जल नहीं पिलाएंगे। भगवान चमार की बिटिया बनने के लिए तैयार, भगवान ब्राह्मण के लिए तैयार, सबके लिए तैयार। अस्तु, उन दूतों ने देखा कि भाई हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हम अपने बेटी के ससुराल में कुछ प्राप्त करें, धर्म विचार सबई सुख माना। सब ने कहा देखो दशरथ जी महाराज ये न्याय की बात बोल रहे हैं, इसलिए इनको कुछ मत कहो। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने, तब गुरु महाराज ने माने दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को कहा कि महाराज ये पत्रिका आई है और ये दूत आए हैं, अब क्या करना चाहिए? तो गुरु जी बोले ओहो देखो देखो राजन, जो पुण्य पुरुष होते हैं, पुण्य पुरुष को मही सुख छाई, उसके लिए सारी पृथ्वी में आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि उसके पुण्य होते हैं वो उस तक ही सीमित थोड़े, वो सब जगह फैलते हैं, उसके लिए सब जगह सुख बन करके फैला करते हैं। जिस प्रकार से नदी है वो सागर की तरफ जाती है, यद्यपि सागर नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर पानी ला करके मिलाए, सागर में तो वैसे ही पानी बहुत है, लेकिन नदी है वो सागर से मिलने पर ही विराम प्राप्त करती है। इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुष के पास सब प्रकार की सुख संपत्ति आती है बिना बुलाए। धर्मात्मा पुरुष चाहता ही नहीं कि मुझे संपत्ति मिले, भ्राती है। तुमने अपने गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, गौओं की, देवताओं की खूब सेवा की है, ऐसी तुम्हारी कौशल्या देवी है, ऐसे तुम्हारे चारों बेटा है जो तुमने प्राप्त किए, तुम्हारा कितना पुण्य की कौशल्या देवी जैसी रानी मिली, चार बेटे तुमको मिले, तो भाई अब तुमको बारात सजा करके और प्रस्थान करना चाहिए। सजाऊ बारात बजाए निशाना, जल्दी करो। राजा ने फिर रनिवास में जाकर के वो पत्रिका के समाचार सुनाए। रानियों तो इतनी राजी हुई, इतनी प्रसन्न हुई, उनको विश्वास है हमारा बेटा ऐसा। मुदित आशीष देई गुरु नारी, फिर गुरु महाराज की स्त्रियां, गुरु माताएं, उनको भी जाकर के कहा, वो भी बड़ी आनंद में हो गई। सब जगह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद छा गया। अब जो है बड़े बड़े जो लोग हैं वो सब राजा के दरवाजे पर आने लगे, सबको दान वगैरह दिया गुरुजनों को और ब्राह्मणों को, और सबके घरों के अंदर एक ही बात हो रही थी कि अब जनक नंदिनी सीता का राम जी के साथ विवाह होगा। सब लोग जो है इसमें आनंद में डूबे हुए, सारी गलियां वगैरह धुपाई, साफ किया गया सारी अयोध्या। यद्यपि अयोध्या सदैव सुहावनी, रामपुरी, यहां भी रामपुरी मंगलमय पावनी, लेकिन आज जो प्रेम बरस रहा है उस प्रेम के कारण से उस सुहावनी अयोध्या को और सुहावनी करने में लग गए, उसका साज सजा करने में लगे, अपने घरों में बड़े बड़े ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला हरद दूब दधि अक्षत माला, ये सब मंगल की सामग्रियां ले ले करके, और बीची सीची चतुरसम, चार रसदार पदार्थ, चंदन है, केसर है, ये और जो है कस्तूरी है, ये सब चीजें मिलती है, चार बढ़िया अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ, सब सड़कें उनसे धोई गई, साफ की गई। जिस जिस घर में जाओ उस घर में माताएं मैंने मिल करके खूब मंगल पद गान गा रही है, उनकी आवाज को सुनकर के देवताओं की स्त्रियां भी उनके स्वरों को देख करके सुनकर के मस्त हो रही, गरे इतनी सुंदर जिनके अंदर गाने की विद्या है वो बड़े उसमें डूब गए। गावई सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। दशरथ जी महाराज के आज इस भवन ये महल के अंदर आनंद तो किसी प्रकार से समा ही नहीं रहा है। जैसे दूध उफनता है ना, तो वो दूध उसमें माता नहीं पात्र में बाहर आता है, ऐसे आनंद बाहर आ रहा है। अब भरत जी महाराज ने बड़े बड़े घुड़सवारों को बुलाया और बोकर के जब तैयार हो जाओ, अब हाय गए चंदन साधव सारी जाई, घोड़े हैं, हाथी है, रथ, इनको सबको तैयार करो। और राम जी की बारात लेकर के अपने सबको चलना है। सबको आज्ञा दी गई, सब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के सब तैयार हुए, बड़े छैल छबीले होकर के, छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। एक घुड़सवार के साथ में दो दो पैदल सैनिक, एक इधर बीच में घुड़सवार। ऐसी ये सेना, ऐसे ये लोग सब जो है तैयार होकर के राजा के महल के सामने आ गए। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबई जो जई कारज जात। जो जिस कारण से काम से जा रहे थे सब प्रकार के सुंदर सुंदर सगुन हो रहे थे। हाथी को समुदाय, घोड़ों का समुदाय, पालकी लेकर के वे आ रहे हैं, और सब जो है आनंद के साथ में, कोई ऊंट पर बैठने लायक, कोई वृषभ पर बैठने लायक, कोई खच्चरों पर बैठने लायक, कोई उन पर रखने लायक सामान को लेकर के चल रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, सब झुंड का झुंड वहां पर नगर के बाहर आकर एक जगह इकट्ठा हो गया। फिर वहां पर दो बड़े सुंदर रथ रखे, एक तो वशिष्ठ जी महाराज के लिए रखा और एक राजा दशरथ जी के लिए रखा। दशरथ जी महाराज भी विराजमान हो गए और वशिष्ठ जी भी विराजमान हो गए। उस समय दशरथ जी महाराज ऐसे लगते हैं जैसे इंद्र और बृहस्पति, ये दोनों साथ साथ जा रहे हो। सब प्रकार की कुल रीति करके वहां से चले। अब वो बारात चल रही है, बड़ा कोलाहल हो रहा है, लोग कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं, सर्व करई पाइक फहराई। देखो कई ऐसे लोग हैं जो खूब आवाज करते करते पाइक फहराई माने ऊपर फहरा रहे, कूद कूद करके उछल करके किलकारियां लगाते हो, ऐसा करते हो। करई विदूषक कौतुक नाना, इतना बड़ा जन समुदाय है, बीच बीच में बहुत से लोग नाना प्रकार के हंसी मजाक के काम करते हैं, कोई जादूगिरी दिखाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई घोड़ों पर बैठे हुए तो कोई उस पर बैठे हुए, कोई निशान बजाते हैं। इतनी आवाज आ रही है कि इनकी आपस में एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती है। चारा चाकू बाम दिशी ले, अब सगुन सगुन क्या हो रहा है वो बता रहे हैं कि चारा चाकू बाम दिशी ले। एक चाकू पक्षी होता है माने वो नीलकंठ है, उसका नीलकंठ होता है उसका, वो बाई तरफ आया और दाहिनी तरफ एक खेत है, उस खेत के अंदर हरियाली खूब छाई हुई, उसमें कौवा बैठा हुआ। देखो यूं तो कौवा बड़ा खराब लगता है, लेकिन दाहिन काग सुखेत सुहावा, हरा भरा खेत हो, हरा भरा खेत और उसमें यदि कहीं कौवा मिल जाए वो अच्छा सकुन होता है। नकुल दर्श सब काहू पावा, और कहीं नेवले का दर्शन हो रहा है, नेवले का दर्शन, बड़ी सुंदर वायु बह रही है। लोवा फिर दर्श देखावा, लोवा माने लोमड़ी, वो जावेर आवेर आवे बार बार यू दिखती है, ये भी बहुत अच्छा शकुन होता है। सबसे बढ़िया शकुन क्या है कि सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, गाय जब दूध पिलाती हुई सामने मिले, बछड़े को दूध पिलाते हुए, बहुत सबसे बड़ा शकुन, सबसे अच्छा शकुन। और फिर दो ब्राह्मण है अपने हाथ में पुस्तक लेकर के आ रहे थे, ये भी शकुन हो गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे हो नीत भये सगुन एक बार। ये सब सगुन है ना, इन्होंने देखा कि आज राम जी के समय में हम यदि विवाह के समय में बारात के लिए प्रकट नहीं होंगे तो आगे हमारा शकुन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अच्छा शकुन कौन सा होता है तो ये लोग जानने लगेंगे, तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे, तो सारे शकुन एक साथ आगे, साहब हम अच्छे हैं, वो कहता हम अच्छे हैं, तो सारे शकुन एक साथ आगे। मंगल शगुन सुगम सब ताके, शगुन ब्रह्म सुंदर सुत तक जाके। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जिनका बेटा बनता है उसके लिए इससे बढ़कर और क्या सगुन होगा। राम सरिसमर दुलहिनी सीता, समदी दशरथ जनक पुनीता। दशरथ और जनक जी महाराज संबंधी बन रहे हैं और राम जी जिनके पुत्र हैं, सीता जी जिनकी पुत्र वधु है, क्या कहने इन लोगों के शकुनों के बीच में। शून्य सव्याव सगुण सब नाचे। राम और सीता के विवाह की बात को सुनकर के संसार भर के सारे सगुण नाकर के वहां नाचने लग गए। आहा विदाता, तुमने हमको बना करके बहुत अच्छा किया, आज के दिन के लिए बनाया था हमको, आज के दिन के लिए। इतने बढ़िया शकुन हो रहे थे, खूब शकुन हो रहे थे। इतने शकुन हो आपको शास्त्रों में एक साथ इकट्ठे हुए नहीं मिलेंगे, सारे शुभ शकुन तुलसीदास जी ने लिख दिए। ऐसे ये दशरथ जी महाराज बारात लेकर के चल रहे हैं। इधर चलते 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 खूब दूर आए, जनक जी को पता चला कि बारात लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सीमाओं पर सब दूत रहते ही है। तो दशरथ जी महाराज ने पहले से ही बीच बीच बरबास सुहाए बरबास बनाए, बीच बीच में ठहरने की खूब अच्छी अच्छी जगह बना दी, और जहां कोई नदी वगैरह थे वहां पर पुल बना दिए, बनाए सेतु। ऐसे ऐसी व्यवस्थाएं रख दी कि देवताओं के पास भी वो सुविधा नहीं, ऐसे रहने के मकान, ऐसे खाने पीने की चीजें, असन बसन शयन शयन असन शयन बर बसन सुहाए। असन माने खाना, सोए शयन माने सैयाए, और बसन माने वस्त्र। ये सब ऐसे ऐसे इनको मिले तो ये बराती सब भूल गए। ऐसे ही चल रहे थे, चलते चलते जनक जी महाराज के वहां पर सीमा में पहुंचे तो जनक जी महाराज के अगुवाई करने वाले लोग बारात की अगवानी में वहां पर पहुंचे। कनक कलश भरी कूपर धारा, ऐसे ऐसे भाजन ललित अनेक प्रकारा, जो मिठाइयों के सामान थे ना, वो कोपर, कोपर कहते हैं, कोपर कहते हैं परात को, बड़े बड़े परातों के अंदर खूब सी खाने की सामग्री रख दी। और कनक कलश स्वर्णिम कलश थे जिनके अंदर पेय पदार्थ थे, पीने के पदार्थ, कलशों में भरे हुए दूध है, दही है, लस्सी है, मट्टा है, जाने क्या क्या है उनके। नाना भांति ने जाए मखाने, अनेक प्रकार के फल लिए हुए, झुंड के झुंड फल लिए हुए कांवट लोग वो भी आ रहे थे। नदी चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। कंधों के ऊपर कहार लेकर के कांवट लोग वो नदियों के मटके के मटके लेकर के जा रहे थे। ऐसी ये बारात की स्वागत की बात हुई। दोनों के दोनों जब आपस में बराती के स्वागत करने वाले और बारात आपस में मिले तो कछुक चले बगमेल। दशरथ जी महाराज के साथ में बारात में आने वाले लोग इतने आनंदित हुए कि अपना जो बाग था, मतलब अपना जो समुदाय था, उसको छोड़ करके दौड़ करके जनक जी के वहां पर गए। दीदी ओह ऐसा है, इतना प्रेम देखा। जैसे अगवानी करने वाले और बराती ऐसे मिले जैसे दो समुद्र आपस में मिलते हो। इधर जनकपुर में आए तो सुंदरियां बहुत सुंदर वहां पर गान गा रही है, आकाश में देवांगनाएं भी बहुत सुंदर गान गा रही है, और जन्म यहां आए जनकपुर में तो जन्वासे में उनकी बहुत अच्छी स्वागत की तैयारी की। जनवासा माने ठहरने की जो इनकी जगह थी वहां। सीता जी ने देखा कि ओहो आज हमारे ससुराल से बारात आई है, तो सीता जी ने अपने हृदय से चुपचाप रिद्धि सिद्धियों का स्मरण किया। सीता जी को कहा जाए कि सीता जी आज तो आप रिद्धि सिद्धि का स्मरण कर रही हो, कल तो आप रो रही थी बार बार कि ये धनुष कैसे टूटेगा, ये तो बड़ा भारी है, आप उस समय सिद्धियों को क्यों नहीं बुलाएगी, हल्का हो जाता। कि वो एक भक्ति का प्रसंग था, ये व्यवहार का प्रसंग है। शिवजी के धनुष को तोड़ने के लिए सीता जी कोई रिद्धि सिद्धि लगाए तो फिर भक्ति कब काम आएगी, वो भक्ति का प्रसंग था। देखो सब चीजें अपनी अपनी जगह काम आती है। आपके पास में खूब अच्छे आभूषण है, पर अंगुली का आभूषण अंगुली में ही अच्छा लगता है। अंगुली का आभूषण है वो आपके कान में लटका दिए जाए, कान का आभूषण है वो आपके यहां बांध दिया जाए, अच्छा थोड़ी लगेगा। है सोने का आभूषण पर अपनी जगह अच्छा लगता है। तो जानी सी बरात पुराई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई। और सिद्धियों को बुला के क्या किया कि सिद्धि सब सिए आयसु अकुनी गई जहां जनवास, उनको कहा सीता जी ने आज्ञा दी उनको, जाओ जनवासी में जाकर क्या करना है ये हम नहीं बताएंगे, तुमको जो करना है वहां पर जाके तुम करो। तो वहां सिद्धियों ने जाते ही ऐसे ऐसे पदार्थ उपस्थित कर दिए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। विभव भेद कछु कौन जाना, वो जो वैभव है कैसे बन गया, इतनी चीजें कहां से आ गई, वहां व्यवस्था करने वालों को पता नहीं, जिनकी व्यवस्था की जा रही उन बरातियों को पता नहीं। नितिन जन्मास बिलो की बराती, सुरसुख सकल सलभ सब भाती, अरे ये तो देवताओं की सी सामग्री हमारे यहाँ कहाँ आई, किसी को कुछ पता नहीं चला। बल्कि ये तो समझ रहे थे कि आहा जनक जी का तो बड़ा ऐश्वर्य है जी, जनक जी का बड़ा वैभव है जी, जनक जी ने तो बहुत अच्छी हमारी सेवकाई की है कि अब जनक जी को ही पता नहीं हमने क्या किया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं केवल एक राम जी को पता था, बस सी महिमा रघुनायक जानी। पर तुलसीदास जी महाराज से कहें कि आपने ये बात यहां क्यों कही, ये बात तो आपको पहले राम जी को बुलाओ, दशरथ जी से मिलाओ, फिर राम जी उस वैभव को देखते और फिर बोलते। लेकिन नहीं, ये पहले बात इसलिए कही कि सीता जी की और राम जी दोनों पहले से ही मिले हुए हैं, सदा से मिले हुए हैं, कभी इनका अलगाव होता ही नहीं है, लीला हो रही, लीला, ये तो लीला है भगवान की कि सीता जी अभी वहां है, राम जी यहां है, अब बाद में विवाह होगा, विवाह हो जाने पर ये एक होंगे, ये तो लीला की बात है, वास्तव में राम और सीता कभी अलग है ही नहीं। इधर विश्वामित्र जी महाराज हैं, वो दशरथ जी से मिलने के लिए आए और दशरथ जी महाराज इनसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हो गए। दशरथ जी महाराज ने सब बातें सुनी, अपने दो बेटे तो साथ में थे, दो बेटे ये आए लेकर के इनको पास में लेकर के बैठे तो ऐसा लगा कि जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ में पुरुष बैठता है, ऐसे दशरथ जी महाराज की शोभा हो रही थी। अब दशरथ जी के पास में जनक जी महाराज के लोग आते हैं और वो आपस में क्या बात करते हैं इसका प्रसंग आगे आता है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय
जय सीताराम 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 जय सीताराम
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 सियावर रामचंद्र की
जय
भोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
जय जय